तभी वेद की फोन की बेल बजी। रिंग होने से वेद अतीत की यादों से बाहर आया। गौतम का फोन था। हाँ, क्या हुआ? वेद ने पूछा। वो जहां पर नहीं है। चली गई? मतलब वो जहां पर नहीं है, वेद ने कहा। वो जहां पर किराए पर रहती थी वहां से जा चुकी है। मैं मकान मालकिन के पास ही खड़ा हूं। कब चली गई, वेद ने सवाल किया। रात चली गई वो जहां से। ठीक है, तुम वापस आ जाओ, वेद ने उसे कहा। वेद सचमुच काफी परेशान हो रहा है, उसने एक बार कहा और वो सचमुच ही चली गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे चली जाएंगी। उसने तो आज सोचा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे पैसों का लालच देगा, मगर एक बार वेद ने कहा और वो नौकरी छोड़कर चली गई। ये बात उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। अगर वो उसी का इंतजार कर रही थी तो ऐसे क्यों गई? क्या कोई बड़ा प्लान बना रही है? कहीं उसका जहां नौकरी करना इत्तेफाक तो नहीं था? वेद अपने आप में काफी परेशान हो रहा था। उसका दिमाग मानवी में ही उलझा हुआ था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। मैं आ सकती हूं, मिस्टर मेहरा? सामने कमल शर्मा खड़ी हुई थी और उसके साथ ही खूबसूरत सी लड़की भी थी। कमल शर्मा, जो कि कंपनी की एक डायरेक्टर थी, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल की होगी, उसके साथ कोई 20 साल की लड़की थी। आइए, आपको पूछने की क्या जरूरत है, वेद ने मुस्कुराकर कहा। इसे मिलो, ये मेरी बेटी है रैना। वेद ने उसकी तरफ देखा। उसने ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट के साथ छोटा सा टॉप पहना हुआ था। कोई काम था, वेद ने पूछा। ये मेरी बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है, साथ में मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही है। आज फ्री थी तो मेरे पास आई थी, मैंने सोचा आपसे मिलवा दूं। कंपनी के अगले असाइनमेंट के लिए अगर मॉडलिंग में इसे चांस मिल जाए, कमल ने कहा। मैं तो अभी कल ही आया हूं, कंपनी में अभी क्या हो रहा है इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। हाँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मिस रैना को काम मिल जाए, वेद ने कहा। अगर कोई और टाइम होता तो वो रैना से खुश होकर मिलता, मगर इस टाइम उसका मन मानवी में इस कदर उलझा हुआ था, उसे कमल और रैना किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वेद को जितना परेशान हो मानवी को ऑफिस में देखकर हुई थी, उससे ज्यादा परेशान जिस तरह वो नौकरी छोड़ गई थी वो इसलिए था। रैना, तुम वेद को अपनी पिक भेज को, मॉडलिंग के लिए जरूरत होगी ना तुम्हारे बायोडेटा की, कमल शर्मा ने रैना से कहा। मेरे पास आपका नंबर नहीं है, रैना ने वेद से कहा। वेद ने उसे अपना नंबर दे दिया था। मेरे पास आपका नंबर आ गया है, अब मैं आपको अपनी बायोडेटा और फोटोग्राफ सेंड करूंगी, रैना कहने लगी। ठीक है। तभी ऑफिस का दरवाजा खोलता हुआ गौतम अंदर आ गया। सॉरी, जब उसने वेद के ऑफिस में कमल शर्मा और उसकी बेटी को बैठा देखा वो वापस जाने लगा। नहीं, तुम आ जाओ, वेद ने उसे कहा। गौतम अंदर आ गया। वैसे किसी के ऑफिस में आने से पहले उसका कैबिन नॉक करना चाहिए, इतने बेसिक मैनर तो होने चाहिए। आपको अपना असिस्टेंट बदल देना चाहिए, कमल को इस टाइम गौतम का आना अच्छा नहीं लगा था। वो मेरा असिस्टेंट है, उसे मैंने ही परमिशन दी है कि वो बिना नॉक के आ सकता है, वरना मेरे ऑफिस में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, गौतम की जगह वेद ने जवाब दिया। मुझे जरूरी काम था, मैंने गौतम को उसी के लिए भेजा था। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं गौतम से बात कर सकता हूँ, वेद ने कमल शर्मा को सीधा सीधा कहा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमें जाना है। कमल शर्मा और रैना दोनों वहां से खड़ी होकर ऑफिस से बाहर आ गईं। मॉम, आप तो कह रही थी कि वो मुझे देखते ही मुझ पर लट्टू हो जाएगा, मगर उसने तो अच्छे से बात भी नहीं की, रैना ने कहा। तुम फिक्र क्यों करती हो, यही तो तुम्हें करना है कि वो तुम पर लट्टू हो जाए। मैं किसी भी तरह तुम्हारी शादी वेद से करवाना चाहती हूँ। तुम किसी तरह वेद से प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर मैं उसे काबू में कर लूंगी। ये इस पूरी कंपनी का होने वाला CEO है, उसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, समझती हो तुम? मुझे नहीं पता कैसे, पर उसे काबू में करो। ठीक है मॉम, अगर आप कह रही हैं। उसका नंबर मैंने ले लिया है, अब रात को बात करूंगी उससे, और उसे अपनी फोटोग्राफी तो भेजनी है। वो दोनों माँ बेटी कमल के ऑफिस में आ गई थी और वहीं बैठी बातें कर रही थी। कमल, जिसने कभी बलवंत मेहरा पर डोरे डालने की कोशिश की थी, जो कभी बलवंत मेहरा की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी, वो बलवंत मेहरा से शादी करना चाहती थी, मगर उसकी बलवंत मेहरा की शादी वेदिका से हो गई, और फिर चाहकर भी कमल शर्मा कुछ नहीं कर पाई थी। उसने बलवंत मेहरा की शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना चाहा, मगर वो इन सब चीजों से पीछे हट गया था और उसे सिर्फ अपनी बीवी के सिवा किसी और में दिलचस्पी नहीं रही थी। अब वेद मेहरा को देखकर उसे अपनी बेटी को वेद मेहरा के पीछे लगा रही थी। रैना का फोन कमल शर्मा की ऑफिस की मेज पर पड़ा था। उसके फोन पर किसी का मैसेज आया, वो उठाकर देखने लगी। कौन है, कमल शर्मा ने पूछा। वेदांत मेहरा है, उसने मुझे ऑफिस में देख लिया था, अपने ऑफिस में बुला रहा है। अब तुम इसका पीछा छोड़ दो, वो शादीशुदा है, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। वेद मेहरा पर ध्यान दो, कमल शर्मा ने कहा। वो तो ठीक है मॉम, पर ये हमें अंदर की खबरें दे सकता है। मैं इसको तो मैंने बोतल में उतारा हुआ है, इसकी शादी भी हो चुकी है, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है, इससे हमारा फायदा ही होगा, रैना ने कहा। बात तो तुम्हारी ये भी ठीक है, तो मॉम ठीक है,
मैं वेदांत के ऑफिस में जा रही हूँ, वो मुझे बुला रहा है। और डार्लिंग आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वेदांत ने रैना को अपने ऑफिस में देखकर कहा। तुमसे मिलने ही तो मैं आई हूँ जहाँ पर। आजकल तो मेरा फोन ही नहीं उठाते, ना मुझसे मिलने आते हो, रैना ने ऑफिस के अंदर आते ही शिकायत की। घर में सगाई और शादी की तैयारी चल रही है, हमेशा रीना मेरे आसपास होती है, इसीलिए तुमसे बात करना जरा मुश्किल हो जाता है। वेदांत ने ऑफिस का डोर लॉक करने लगा। ये लॉक क्यों कर रहे हो? रैना जो वहां पर सोफे पर बैठ गई थी उसने कहा, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वो उसके पास आ गया और अपना ब्लेजर उतरने लगा। जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता। वेदांत ने उसकी थाई पर हाथ रखा। क्यों, शादीशुदा हो, बीवी है तुम्हारी, मेरी क्या जरूरत है? रैना ने बड़ी अदा से बोली। बीवी में वो बात कहाँ होती है जो गर्लफ्रेंड में होती है? वेदांत ने उसकी थाई पर हाथ रखा। क्यों, शादीशुदा हो, बीवी है तुम्हारी, मेरी क्या जरूरत है? रैना ने बड़ी अदा से बोली। बीवी में वो बात कहाँ होती है जो गर्लफ्रेंड में होती है, और जो तुझ में है उसमें वो बात नहीं है। वेदांत ने उसके जो छोटा सा टॉप पहना हुआ था उसके अंदर हाथ डाल दिया। रैना उठकर बिल्कुल उसके पास आ गई और उसे किस करने लगी। थोड़ी ही देर में उन दोनों के कपड़े बाहर सोफे पर एक साइड पर पड़े हुए थे और दोनों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसके बाद वेद अपने काम में बिजी हो गया था। काम करना उसे पसंद था, इस बात में कोई शक नहीं था। जो काम वो शुरू करता उसे इतने ध्यान से करता था कि बिल्कुल डूब जाता था। उसके दिमाग में मानवी की बात भी निकल गई थी, मगर जैसे ही शाम को वो फ्री हुआ फिर उसके दिमाग में वही सवाल घूमने लगा। अगर वो उसका इंतजार कर रही थी तो उसके एक बार कहने पर ही वो क्यों काम छोड़कर चली गई? वो यही सोचता हुआ वो ऑफिस से बाहर निकल गया। उसका मूड क्लब जाने का था, वो मानवी की बात को बिल्कुल भूलना चाहता था। घर पहुंचकर फ्रेश हुआ, वो नहा कर आया ही था कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ।
उसकी मॉम थी, उसके हाथ में जूस का गिलास था। मामा आप क्यों लेकर आई, किसी सर्वेंट को भेज देती, उसने कहा। मैंने सोचा इस बहाने से थोड़ा टाइम बेटे के साथ भी स्पेंड कर लूंगी। कहीं जा रहे हो? उसने देखा वेद ने कपड़े चेंज करके शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। क्लब जा रहा हूँ, कल तुम शादी के लिए अपनी शॉपिंग कर लो, दिन बहुत कम रह गए हैं। ठीक है मॉम, कर लूंगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। ठीक है मॉम, हम दोनों चलेंगे। वेद जानता था कि उसकी माँ उसे बहुत चाहती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वेद क्लब के लिए निकल गया था। उसकी मॉम कुछ सोचती हुई नीचे आने लगी। असल में वेदांत की वाइफ रीना की छोटी बहन आ रही थी। उसे पता था कि रीना की फैमिली चाहती है कि उसकी शादी वेद के साथ हो जाए, और वो वेदिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे डर था कि वो वेद पर अपना चक्कर चलाने की कोशिश करेगी और ऐसे हालात पैदा करेगी कि उसकी शादी वेद से हो जाए। वो वेद से बात करना चाहती थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वेद से खुलकर बात कर सके। उसने वही बात रात को बलवंत के पास सामने रखी। उसकी बात सुनकर बलवंत हंसने लगा। तुम अपने बेटे को बचाकर रखना चाहती हो, इसीलिए तो फिक्र है वो ऐसा जाल बनेगी कि वेद शादी के लिए मजबूर हो जाए। पता है रीना और वेदांत की शादी कैसे हुई है? रीना तो फिर भी अच्छी लड़की है, मगर उसकी छोटी बहन और उसकी माँ, तुम अच्छे से जानते हो। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ भगवान से इतना मांगो कि तुम्हारे बेटे की लाइफ में सही लड़की आ जाए, जैसे तुम मुझे मिली थी वैसे ही। मैं हूं ना, मेरी हर तरफ नजर है, कहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं छुपा मुझसे, बलवंत ने बड़े प्यार से वेदिका को कहा। ठीक है, तुम सीरियस नहीं लेते मेरी बात को, अच्छा मेरे पास आओ। वेदिका जो बेड की साइड पर बैठी थी बिल्कुल बलवंत के साथ जाकर बैठ गई। बलवंत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा बेटा बेवकूफ नहीं है, बहुत चालाक है, सच पूछो तो जरूर से ज्यादा चालाक है तुम्हारा बेटा। मानता हूँ लड़कियाँ उसकी कमजोरी है, मगर वो बेवकूफ़ी नहीं करता, समझी तुम? और मैं हूं ना, क्यों फिक्र करती हो तुम? उसकी बात पर वेदिका मुस्कुराई। हाँ ऐसी अच्छी लगती हो ना मुस्कुराती हुई, अब बेटे का फिक्र छोड़ो, उसके बाप का फिक्र करो। उसने वेदिका को खींचकर बाहों में ले लिया था। बलवंत का छोटा भाई रमेश और उसका बेटा वेदांत दोनों ऑफिस में थे। चाहे काफी रात हो गई थी मगर वो लोग घर नहीं आए थे, उन दोनों के साथ वहां पर कोई और भी था। तो अब इस वेद का क्या करें? मुझे लगा था कि आजकल बलवंत की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो शायद मुझे कंपनी का सीईओ बना दे, मगर देखो उसका बेटा लौट आया, रमेश ने वेदांत से कहा। उसकी आप फिक्र मत करो डैड, काफी आयाश है वो और किसी से डरता भी नहीं, उसके पीछे लगाने के लिए एक लड़की है मेरे पास, उसके साथ मेरी बात हो चुकी है, मगर क्या काम हो जाएगा, कोशिश तो कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी हम लोग शादी में कम से कम एक हफ्ते के लिए जयपुर होंगे, तब काम की बात होगी नहीं, वहां पर यही सब तो होगा, बहुत सही टाइम होगा जब तुम वेद को अपने रास्ते से हटा सको, तो फिक्र मत कीजिए, चाहे जो हो जाए वेद मेरे रास्ते में नहीं रहेगा, सीईओ आप ही बनेंगे, फिर ये ना हमारी हेल्प के लिए। उनके साथ जो तीसरा था, वेदांत ने उसकी तरफ इशारा किया, प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें, आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं।